जय राधा माधव कुंड बिहारी जय राधा माधव जय जनवल्लभ गिरिवर दादे
गोपी जनवल्लभ गिरिवर
गोपी जनवल्लभ गिरिवर दादे
गोपी जन यशोदानंदन व्रज जन हरि यशोदानंदन व्रज जन
यमुना तीरा
यमुना तेरा
वदाचारी
Hare Krishna, Hare Krishna. जिनके कारण आज हम वृंदावन को देख पाते हैं, ऐसे रूप गोस्वामी ने किए थे। तो एक व्यक्ति को भगवत प्राप्ति के लिए शुरुआत से लेकर अंत तक जो भी चीज चाहिए वो सिर्फ उपदेश अमृत में क्या है, भरी हुई है। जिस प्रकार से कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और अपनी सारी शिक्षाओं को समराइज करते हैं और वो वो शिक्षा स्तम्भ के रूप में 8 श्लोकों में हमें नॉलेज या ज्ञान प्रदान करते हैं। तो उसी प्रकार से वही चैतन्य महाप्रभु से जो शिक्षा रूप गोस्वामी ने प्राप्त की थी इलाहाबाद में दशाश्वमेध घाट पर लगभग 550 साल पहले, वही सारी शिक्षा या उन सारे उपदेशों का जो सार है वो श्रील रूप गोस्वामी ने एक छोटे से ग्रंथ में डाला है और इनमें संस्कृत के 11 श्लोक हैं और वो 11 श्लोक सारे शास्त्रों के निचोड़ को प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, योग्य पात्र जानी यहाँ मोरे कृपा फैला, मोर कृपा तहैला। उन्होंने कहा कि ये जो रूप गोस्वामी है मैंने देखा कि ये क्वालिफाइड व्यक्ति हैं, इनकी योग्यता आदि को देखकर मैंने क्या किया, तबे शक्ति संचारी आमिर कैलो उपदेश, मैंने क्या किया रूप गोस्वामी को शक्ति का संचारण किया, उनको नॉलेज आदि प्रदान किया और साथ साथ भगवत भक्ति का उपदेश मैंने प्रदान किया। तो उन उपदेश जो चैतन्य महाप्रभु से प्राप्त किया था उन्हीं सारे उपदेश को रूप गोस्वामी इस उपदेशामृत नामक ग्रंथ में हमें प्रदान करते हैं। और वास्तव में इस ग्रंथ के जो शुरुआत के 8 श्लोक है वो इस ग्रंथ की क्रीम है, इन 8 श्लोकों में सारा भंडार है और बाकी जो 3 श्लोकास है उन 8 श्लोकों को फॉलो करते हैं। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी ये हमें एक गाइड बुक प्रदान करते हैं, एक गाइड बुक प्रदान करते हैं। कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें गाइड की आवश्यकता है। आप ट्रैवलिंग के लिए जाते हो, घूमने भ्रमण के लिए जाते हो तो किसी गाइड को आप अपने साथ रखते हो, गाइड बुक को रखते हो, या फिर आप कोई वस्तु परचेज करते हो तो एक मैनुअल होता है उसी को भी गाइड बुक कहते हैं। तो उसी प्रकार से एक व्यक्ति भक्ति रूपी पाथ पर या रोड पर चल रहा है तो उस व्यक्ति के लिए हमेशा एक गाइड बुक की आवश्यकता है, एक गाइड की आवश्यकता है। तो वो जो गाइड है या गाइड बुक क्या है, रूप गोस्वामी का ये उपदेश अमृत है। और ये उपदेश अमृत इसलिए है, उपदेश अमृत केवल एक शिक्षा हमें प्रदान करता है कि कैसे कृष्ण के शुद्ध भक्त बना जाए, क्या बना जाए, कृष्ण के शुद्ध भक्त बना जाए। तो इसलिए कोई व्यक्ति इस गाइड बुक का आश्रय नहीं लेता, गाइड बुक के द्वारा आगे बढ़ता नहीं है तो उसके लिए भगवत भक्ति बहुत दूर है। कोई व्यक्ति सोचेगा नहीं नहीं मुझे आवश्यकता नहीं है इसकी शिक्षाओं के, मेरे भगवत भक्ति में मुझे थोड़ा बाईपास चाहिए। हम हर समय बाईपास सर्जरी, बाईपास रोड्स है ना, बाईपास करना चाहते हैं, लेकिन आप श्रील रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को बाईपास करना शुरू करते हैं तो क्या होगा, आप बने तो रहोगे भगवत भक्ति के पाथ पर, रस्ते पर, लेकिन आपको कितना समय लगेगा, बहु जन्मे, कितने जन लगेंगे, करोड़ों करोड़ों जन लगेंगे, तब आप सोचोगे कि अरे कृष्ण के चरण कमल कहाँ है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि भगवत भक्ति में शॉर्टकट क्या है, भगवान के भक्तों की शिक्षाओं के अनुगत होकर उनके अनुसार अपने आप को भगवत भक्ति के एक्टिविटीज और कार्यों में लगाना, वही एक में शॉर्टकट है और कोई शॉर्टकट नहीं है। इसलिए ये जो बुक है ये शुरुआती कोई छोटे से स्तर से नहीं होता है, ये इसकी जैसे भगवत गीता जहां खत्म होती है वहां कौन सा ग्रंथ शुरू होता है, भागवतम। भगवत गीता कहते सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम रज, कि आप सारे भौतिक धर्मों का, उपधर्मों का, परधर्म, मन वाणी मन शरीर आदि ये भौतिक धर्मों का त्याग करो। कृष्ण कहते कि केवल मेरे एकमात्र शरण ग्रहण करो, ये परम धर्म है, इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। तो जहां भगवत गीता खत्म होती है वहां श्रीमद् भागवतम शुरू होता है और भागवतम की शुरुआत ही होती है किस चीज से, भागवत शुरू ही होता है, भागवत कहता है धर्म प्रोचित कैतवत्र परमहो निर्मत सराणाम सताम, कि भागवतम में धर्म अर्थ काम मोक्ष जैसे ये भौतिक धर्म है जिसमें स्वार्थ निहित है उनको किक आउट किया है, फेंक दिया है, और श्रीमद् भागवतम केवल प्योर डिवोशनल सर्विस, भगवान के प्रति जो शुद्ध प्रेमा भक्ति है उसी को स्थापित करता है, उसी के अलावा श्रीमद् भागवतम में किसी और स्थान, किसी और वस्तु के लिए स्थान नहीं है। तो ऐसे ही ये जो उपदेश अमृत है रूप गोस्वामी का, इसकी पहली योग्यता है क्या है, इसका प्लेटफॉर्म ही है कि आपको गोस्वामी चाहिए, आपको उन्होंने चाहिए गोस्वामी। गोस्वामी का मतलब क्या है, गो का मतलब इंद्रिया है, स्वामी का मतलब मालिक या कंट्रोल, कंट्रोलर, कंट्रोलर। तो उसी प्रकार से ये उपदेश अमृत हमें इस धरातल से शुरू करवाता है कि आप वास्तव में गोस्वामी बनो। गोस्वामी के परे क्या है, गोदास। गो का मतलब है इंद्रिया, जो इंद्रियों का दास बन चुका है, गुलाम बन चुका है, अपने इंद्रियों की तुष्टि करने में दिन रात लगा हुआ है, वो इन इंद्रियों का गुलाम है, नौकर है, सेवक है, दास है। लेकिन वास्तव में हम यहाँ आते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, और अलग अलग प्रकार की सेवाओं में लगते हैं, तीर्थ यात्रा में भ्रमण करते हैं। इन सब का उद्देश्य क्या है कि हमें कृष्ण दास बनना है। क्या दास बनना है, कृष्ण दास। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ये जीव का हर एक व्यक्ति का स्वभाव है। लेकिन उसके अंदर भोग की इतनी तीव्र लालसा है, मूर्खता के कारण कृष्ण की सेवा छोड़कर, कृष्ण का दासत्व को छोड़कर वो भौतिक मायाबद्ध जीवों की सेवा में लगा हुआ है, भौतिक सेवा में लगा हुआ है। तो माया का दास बनना है या कृष्ण दास बनना है, यह हमारे ऊपर निर्भर है। क्योंकि एक ही साथ आप अपने दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, दो मालिक को नहीं रख सकते। जैसे कोई स्त्री है वो दो पतियों को नहीं रख सकती है कि नहीं, तो उसी प्रकार से हम एक प्रकृति है, हमको में जीव है, तटस्थ शक्ति है, भगवान की तटस्थ शक्ति है, हम प्रकृति है। तो हम प्रकृति, इसका मतलब है कि हम क्या है, स्त्रीवाचक है, और हमारा कर्तव्य है कि हमारे जो स्वामी है उनकी सेवा करना। और स्वामी तो एक हो सकते हैं, कौन है वो स्वामी, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। स्वामी तो एक है, कृष्ण है, और जितने भी सेवक जीव है वो उनके नित्य दास है। तो कहने का तात्पर्य है कि आप या तो गोदास बनो या तो क्या बनो, कृष्णदास। दोनों की एक साथ सेवा नहीं कर सकते आप, या तो कृष्ण को चूज करो अपने लाइफ में, या किसको चूज करो, माया को चूज करो, अपने इंद्रियों की तृप्ति में लगो। क्योंकि शरीर का मतलब है इंद्रियां, शरीर बना है किस चीज से, 10 इंद्रियों से बना है। तो इसलिए इंद्रियों का मतलब है कि ये भौतिक शरीर। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ये जो श्री उपदेश अमृत है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं या फिर हर शनिवार को हम सुनते हैं, तो वास्तव में इसकी शुरुआत ही होती है कि हमें क्या होना चाहिए, गोस्वामी बनने का प्रयास करना चाहिए। उसके बिना असंभव है, क्योंकि हर जीव आनंद, भौतिक आनंद उठाने के लिए अपने शरीर का आश्रय लेता है, और ये शरीर हमें प्राप्त हुआ है अपनी इच्छा के कारण, हमने इच्छा की और फिर हमें ये शरीर मिला। और इच्छा कैसे हमने प्रकट की, मृत्यु के समय अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, या यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम। मृत्यु के समय आप जिस भाव का, जिस चीजों की इच्छा करोगे उसके अनुपात में आपको नया शरीर मिलेगा। हाँ, कोई अपने पत्नी का स्मरण करते हुए मरता है, शरीर छोड़ता है, तो उसको अगले जीवन में स्त्री बनना पड़ेगा। कोई आप व्यक्ति अपने घर के कुत्ते का स्मरण करते हुए मरता है, तो घर के अंदर ही कुत्ता बनना पड़ेगा। तो मतलब हम इच्छा कर रहे हैं, ये शरीर हमें अपनी इच्छा के कारण मिला है, और इस शरीर को हम माध्यम बना रहे हैं हम कैसे अधिक से अधिक भोग किया जाए। बल्कि हम शरीर से अलग है, हम आत्मा है। इसलिए अब कठोपनिषद उसमें वो वर्णन आता है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च, कि ये जो आत्मा है इस शरीर रूपी रथ पर बैठा हुआ व्यक्ति है, और मन क्या है इसका, बुद्धि तो सारथी विद्धि, बुद्धि इसका सारथी है, और मन मन लगाम है, और सारे जो घोड़े हैं वो इंद्रियों के समान है, और सारी इंद्रियां क्या करती हैं, दौड़ती हैं अपने अपने स्थानों में। पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, और पांच कर्म इंद्रियां हैं। तो विशेष रूप से हमें कौन भगाता है जगत में? हमारी जो ये ज्ञान इंद्रियां हैं और कर्म इंद्रियां हैं, ये दोनों इंद्रियां हमें भोग करने के लिए लालायित करती हैं और हम वास्तव में बहुत तेजी से भागते हैं अपने जीवन भर, दिन रात दौड़ते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी इस श्लोक के पहले ही मैंने पहले श्लोक को ही चूज किया है। पहले श्लोक का एक ही शब्द है। पहला श्लोक क्या है इसका? वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगानियो विषयेत दीदा सर्वामपिमा पृथ्वीम से शिष्या। वही व्यक्ति जगत गुरु बनने के योग्य है या वही व्यक्ति शिष्य स्वीकार करने के योग्य है जिस व्यक्ति ने इन छह चीजों के वेग या फोर्स इनको कंट्रोल किया है, अपनी वाणी, अपना मन की जो डिमांड्स है, मन की जो मांगे हैं, क्रोध के ऊपर कंट्रोल किया है, अपने जिह्वा के ऊपर कंट्रोल किया है, अपने उदर इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल किया है और अपने जनन इंद्रियों पर कंट्रोल किया है। तो इस प्रकार से वास्तव में हम सब लोग रथ के ऊपर सवार हैं और रथ के ऊपर सवार होकर क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। वेग, इसलिए तो वेग बोला गया है, वेगम। तो हम ये छह प्रकार के वेग जिनके द्वारा हर जीव प्रभावित रहता है और दिन रात गधे के जैसे कार्य करता है और दौड़ता रहता है केवल उस इंद्रियों के वेगों की या उस इंद्रिय की डिमांड की पूर्ति करने के लिए, वही व्यक्ति वो केवल उसके अलावा जीवन का लक्ष्य उसे नजर नहीं आता। तो इसलिए इनमें से जो छह वेग है उनमें से जो जिह्वा वेग है उस पर हम थोड़ा कुछ समय के लिए चर्चा करेंगे। तो जिह्वा वेगों का मतलब, जिह्वा का मतलब क्या है? जीव। क्योंकि हर एक इंद्रिया अपने आप में बहुत प्रभावशाली है और इन इंद्रियों का राजा कौन है? मन है। अर्जुन इतने शक्तिशाली व्यक्ति थे वो भी वो हर गए अपने मन के चंचलता के कारण। प्रमाथि बलव दृढ़ा, हे कृष्ण मेरा मन इतना शक्तिशाली है, मैं हवा को रोक सकता हूँ, वर्षा आदि को रोक सकता हूँ, लेकिन मेरे मन को कंट्रोल करने का मुझ में सामर्थ्य नहीं है। मैं हद बल हो गया हूँ, अपने घुटने मैंने टेक दिए है, मैं नाक अपनी रगड़ रहा हूँ लेकिन मन मेरे कंट्रोल में नहीं आता है। तो उसी प्रकार से ये जो जीवा है, क्योंकि हमारी सारी इंद्रियों में कोई सबसे प्रमुख, कोई सबसे पावरफुल, कोई सबसे शक्तिशाली कोई इंद्रिया है तो शास्त्र और हमारे आचार्य कहते हैं वो कौन सी है? जीव है। जीव को आपने कंट्रोल किया है तो वास्तव में किंग हो, वास्तव में स्वामी हो, मालिक हो, प्रोप्राइटर हो। और जीव को यदि हमने वश में नहीं किया है तो हमने, मैं भी सारे जगत पर विजय प्राप्त किया हो, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हमने हासिल किए हो, ये जगत का सबसे धनवान व्यक्ति हम बने हो, लेकिन फिर भी हम हमेशा गुलाम बने रहेंगे। किसके? अपने इंद्रियों के, उनके अधीन रहेंगे और पूरा जीवन इस इंद्रियों की सेवा में मग्न रहेंगे और ये इंद्रियां कभी भी संतुष्ट नहीं होने वाली। तो इस प्रकार से आचार्य गण कहते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, तार मध्ये जिह्वा अति लोभ माया सुदुर्मति। हे कृष्णा, ये जो जीव है ये सबसे अधिक पावरफुल इंद्रियां है, ये सबसे अधिक प्रबल है, मुझे ये भगाती है और इस इंद्रिया, ये जो जीवा है ये बहुत अधिक क्या है? लालची है, ग्रेडी है, लोभ माया सुदुर्मति। ये कैसी है? मेरी मति को भी क्या करती है? दुर्मति कर देती है। तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि बाकी जो इंद्रियां हैं वो सारी इंद्रियां अपना एक कार्य करती हैं। आंख देखने का कार्य करेगी, नाक सुनने का कार्य करेगी, तो लेकिन ये जो जिह्वा ऐसी है, ये जिह्वा क्या है? दो कार्य करती है। एक कार्य क्या है उसका? बोलना। और दूसरा कार्य क्या है? प्रभुपाद भगवद गीता के तात्पर्य में कहते हैं, द फंक्शन ऑफ द टंग इज टू टेस्ट एंड टू वाइब्रेट, कि रसास्वादन करना। इसलिए जिह्वा का दूसरा नाम क्या है? रसना। रसना का मतलब है कि जो रस को चखती है, रस को टेस्ट करती है।
बाकी सारी इंद्रियां कुछ कालांतर में थक जाती हैं, लेकिन एक इंद्रिया थकती नहीं है, वो हमेशा फ्रेश रहती है, इंस्पायर्ड रहती है और बहुत जोश में रहती है। वो क्या है? जीवा। उसको कुछ करना होता नहीं है, साइज तो इतना छोटा है, कोई हड्डी भी नहीं है, हर समय कार्य करती रहती है। अब बाकी इंद्रियां थक जाएंगी लेकिन जीवा कोई थकती नहीं है। जीवा का कार्य क्या है? जस्ट जो अग्र भाग है, टंग का जो छोटा सा अग्र भाग है, उससे वो जस्ट टेस्ट करती है और मटेरियल को अंदर भेज देती है। उसको कुछ लेना देना नहीं है, बाकी अंदर क्या हो रहा है, कितना कष्ट अनुभव करना पड़ रहा है, उसका कोई कार्य नहीं है। जितना मर्जी टेस्ट कराओ। इसलिए कई बार लोग भरपेट भोजन खाते हैं और शाम को निकलते बाहर इवनिंग वॉक करने के लिए। अब वहां गोलगप्पे का दुकान दिखता है, आइसक्रीम की शॉप दिखती है और कुछ कुछ और चीजें दिखती हैं, तो वो सब बुलाते हैं। हां, शॉप्स क्या करते हैं? सारे आइटम्स बुलाते हैं, इधर आओ, प्लीज कम, इधर आओ। तो जीवा वास्तव में व्यक्ति नहीं चलता है। कौन चला रहा है उसको? टन का अग्र भाग। इसलिए इसको वेगम कहा गया है, फोर्स। हमें क्या बल है? खाने के बाद वैसे व्यक्ति सोना चाहता है, लेकिन जीवा ले जाती है और उसको पता है कि पेट अभी ठूस ठूस के भरा हुआ है, हाँ, और नहीं जाएगा। लेकिन जीवा कहते नहीं प्रभु जी, और थोड़ा। तो प्रभु जी की जीवा कहती है हाँ, यस यस, और स्टमक कहता है नो नो, पेट कहते नहीं नहीं, बस बस, कितना भरोगे? जीव कहती है नहीं नहीं, थोड़ा सा थोड़ा सा और ले लो। इस प्रकार से वास्तव में ये जो जीवा है ये हमेशा तत्पर रहती है, ये कभी थकती नहीं है। हाँ, इतनी छोटी है लेकिन वो बहुत बड़े बड़े कार्य करती है, ऐसे कार्य जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। शास्त्र इस जीवा के उदाहरणों से भरे पड़े हैं। और वास्तव में देखा जाए, जो भी ये महाभारत और रामायण है वो किससे, किसका प्रभाव है? जीवा का। हाँ, वो मंथरा ने अपने जीवा का यूज किया कई कई को, इतना उसने एक्सपर्टली बोल दिया और उसके दिमाग को खराब कर दिया मंत्रा कई कई के, और उसका परिणाम क्या हुआ? पूरा रामायण ना, इतना लंबा रामायण कई हजार श्लोकों से भरा पड़ा है, भगवान राम की लीला है। और यह महाभारत, महाभारत भी ऐसे ही है। तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि सारे जो इंद्रियां हैं उनको विजय प्राप्त करना, मतलब शास्त्रों में भागवत में वर्णन आता है, इंद्रियाणि जनत्याशु निराहार मनीषिणः वर्जयित्वा तु रसनं तन्निरन्नश्च वर्धते, कि जो मुनिगण है वो अपनी बाकी सारी इंद्रियों को तो वश में करते हैं, उनको पता है बाकी सारी इंद्रियों को भोजन कम कर दो, फास्टिंग करो, तो इंद्रियां क्या हो जाती है? निर्बल हो जाती है। लेकिन तावत इंद्रियो न शाद, तो वहां श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि लेकिन ये जो जीवा है इसको वश में करना क्या है? बहुत ही कठिन है। इसको फास्टिंग होता है तो वो और काम करने लगती है, वो हमेशा सोचती रहती है, ढूंढते रहती है, चाहती है कुछ ना कुछ मिले, इसको रस मिले। इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम कहता है कि वास्तव में इंद्रियों पर विजय पूर्ण रूपेण प्राप्त करना, उसका मतलब है कि व्यक्ति को किस पर विजय प्राप्त करना? अपने जीवा के ऊपर विजय प्राप्त करना। इसलिए इसको वेग कहा गया है, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स है कि बड़े से बड़े व्यक्ति भी अपने लाइफस्टाइल, अपने जीवन, अपने गोल आदि को बदल देता है। जीवा के कंट्रोल में आने के कारण व्यक्ति हर चीज को भूल जाता है और अपना नया जीवन वो व्यक्ति धारण करता है। और इस जीवा के कारण ही व्यक्ति अधिक से अधिक अपने जीवन में पाप कर्मों में लगता है। पाप कर्मों का एक प्रमुख अंग है जीवा, जीवा को कंट्रोल ना करना, जीवा को इजीली फ्रीडम दे देना। इसलिए इस जीवा के दो कार्य है, जैसे मैं शुरुआत में कह रहा था, जीवा का एक कार्य है बोलना और दूसरा क्या है? भोजन ग्रहण करना। तो श्रीमद् भागवतम आदि ग्रंथ में कहा गया है कि कलयुग के जो लोग हैं वो बहुत बोलना चाहते हैं, टॉकेटिव होते हैं, ये उनका लक्षण है। कलयुग के लोग क्या है? सुनना नहीं चाहते, हाँ, कलयुग के लोगों का लक्षण क्या है? हाँ, आजकल कौन से बच्चे सुनते हैं माता पिता का? कौन पति अपने पत्नी का सुनता है या कौन पत्नी अपने पति का सुनती है? कौन से मिनिस्टर के मिनिस्टर को जनता सुनती है? कोई सुनना चाहता है किसी से? नहीं, हर एक व्यक्ति जैसे मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, हर एक व्यक्ति हम बोलना चाहता है। इसलिए कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए भगवान ने क्या किया? अनावृत्ति शब्दार कि शब्द के द्वारा ये लोग शब्द वाइब्रेट करना चाहते हैं, भौतिक शब्द, मंडल वर्ड्स। इसलिए शास्त्रों ने, भगवान ने, आचार्यों ने क्या हमें दिया है कि फिर आध्यात्मिक शब्दों को क्या करो? वाइब्रेट करो, उनका उच्चारण करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जोर से
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
तो शास्त्र पुराण में वर्णन आता है, जिह्वाग्रे वसते लक्ष्मी, जिह्वाग्रे मित्र बांधवः, जिह्वाग्रे बंधनं प्राप्तं, जिह्वाग्रे मरणं दुरः। कि सारी जो चीजें हमारे जीव के आगे बैठी हुई है, आपका जीवन बेस्ड है कि आप अपने जीवा का कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। बहुत इजी है, लेकिन थोड़ी सी बुद्धिमानी की आवश्यकता है। और वो बुद्धि हमें कहां से प्राप्त होती है? शास्त्रों के माध्यम से, भक्तों के संग आदि से। तो पुराण कहते हैं कि जीवाग्रे वसते लक्ष्मी, जीव के आगे वास्तव में लक्ष्मी का निवास है। आगे किस प्रकार से आप अपने जीव का इस्तेमाल करते हो? जीवाग्रे मित्र बांधवा, इस जीव के डीलिंग, जीव के व्यवहार, जीव के उचित विनिमय से ही आप क्या बनाते हो? किसी को मित्र बनाते हो और किसी को शत्रु बनाते हो। जीवाग्रे बंधनम प्राप्तम, जीव के द्वारा आप बंधन में फंसते हो, और जीवाग्रे मरणम दुरह, और जीव के द्वारा या तो आप मृत्यु को प्राप्त होते हो या अपने मृत्यु को क्या करते हो? दूर रखते हो। तो इसलिए ये जो इंद्रियां, शास्त्र कहते हैं कि सबसे अधिक डेंजर है, सबसे अधिक भयावह है, क्योंकि हम मृत्यु को आमंत्रण देते हैं अपने जीवा का इस्तेमाल करके। प्रभुपाद मेंढक का उदाहरण देते हैं कि शाम के समय मेंढक या बारिश के समय में मेंढक क्या करते हैं? ड्राउ ड्राउ चिल्लाते रहते हैं, गर्जना करते हैं, अपनी जीवा से जोर जोर से बोलते रहते हैं, और उनकी ध्वनि सर्पम को सुनाई देती है, और उस ध्वनि को सांप सुनते हुए आते हैं और उनको निगल जाते हैं। तो उसी प्रकार से व्यक्ति पूरा जीवन मेंढक की तरह क्या करता है? तर तर करने में लगाता है, कोई रस्सी नहीं है उसके पास, वो बंद बुद्धि का है, उसको पता ही नहीं कि जीवा का सदुपयोग और सर्वोत्कृष्ट उपयोग कैसे किया जाए। उसके कारण पूरा जीवन वो अनावश्यक बातों में लगाता है, मेंढक के बाद तर-तर करता है, और फाइनली मृत्यु सर्व अर्हत शाहम। गीता में कृष्ण कहते हैं कि उस सांप के बाती में मृत्यु के रूप में आता हूं, और उसकी जो तर-तर है, तर-तर का मतलब क्या है? व्यक्ति पूरा जीवन अपने जीवा के माध्यम से गर्वित होता है और घोषणा करता है, मैं कौन हूं? भोक्ता हूं, मैं मालिक हूं, मैं स्वामी हूं, मैं प्रोप्राइटर हूं, मैं विजेता हूं। इस प्रकार से व्यक्ति अपने जीवा के द्वारा अपने आप को स्थापित करता है, और कृष्ण कहते कि फाइनली ऐसा व्यक्ति खत्म हो जाता है। क्योंकि ये जीव के द्वारा जो शब्द हमें निकलते हैं बाण की तरह है। महाभारत कहते हैं कि बाण की तरह शब्द निकले हैं तो किसी के हृदय को छेद करने का इनमें सामर्थ्य है, और एक बार धनुष से बाण निकलते हैं तो वो वापस नहीं आते। तो उसी प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि आपके पास दो आंखें हैं तो किसी चीज पर आपको कमेंट करना है, बोलना है, तो पहले आंखों से ठीक से देखो और फिर क्या करो? अपने जीवा का इस्तेमाल करो, क्योंकि इसमें से निकले हुए शब्द तलवार या बाण की बाती है, वो किसी को क्या करते हैं? कष्ट पहुंचा सकते हैं। जैसे द्रौपदी के बारे में हम देखते हैं, जब मई दानव के द्वारा खांडव वन में बड़ा सुंदर महल बनाया गया, मई दानव ने, जो दानवों का इंजीनियर है, जो नीचे के लोगों में रहता है मई दानव, तो ऐसा मई दानव बहुत एक्सपर्ट है टेक्निकल चीजें बनाने में, बड़ी बड़ी इमारतें, सिटीज कंस्ट्रक्ट करने में, तो ऐसे मैं दानव ने जब पांडवों के लिए बड़ा खांडव वन में इंद्रप्रस्थ का राज्य बनाया, बहुत अद्भुत था। और फिर ये दुर्योधन भी आया, हम सब जानते हैं दुर्योधन गया देखने के लिए, तो हर चीज और हर वस्तु आदि को देखकर दुर्योधन क्या हो रहा था, भ्रमित हो रहा था। अब कभी वो जा रहा था, लग रहा था कि दीवार है, लेकिन नहीं, दीवार नहीं होती थी। और कभी कभी चलता था तो लगता था कि अभी पानी आ रहा है, तो रुक जाता था। और कभी कभी जब रियली पानी आता था तो वो सोचता था कि पानी नहीं, यहाँ तो भूमि है। इस प्रकार से द्रौपदी अपने सखियों के संग में महल से ऊपर थी, अब वो देख रहे थे नीचे दुर्योधन चल रहे हैं। और दुर्योधन चलते चलते उनको ये भास हुआ कि अभी यहाँ पानी नहीं है, अभी तो यह भूमि है। भूमि समझकर वो पानी में गिरे तो ऊपर से द्रौपदी ने अपनी जीवा का इस्तेमाल किया। क्या बोली, वो अंधे का जो बेटा है पुत्र वो भी अंधाए हैं, ऐसे कई श्लोकों में वर्णन महाभारत में आता है। तो उसका परिणाम क्या हुआ, आगे चलकर कितना सारा कठिनाई से द्रौपदी और आदियों को गुजारना पड़ा। इसलिए शास्त्र हमें आगाह करते हैं कि जो जीव है वास्तव में उसका उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि जीव हमें जीवन दे सकती है और जीव भी हमें मृत्यु दे सकती है। एक बार एक मेंढकों का टीम था, जैसे क्रिकेट टीम होता है, तो एक मेंढकों का टीम वो घूमने निकला गांव फॉरेस्ट में, जंगल में। मेंढक अपने चार पांव से कूदते कूदते जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक 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 पेड़ की सूखी लकड़ थी, उसके ऊपर से वो चल रहे थे। तो अचानक उनके पूरे टीम में से, क्योंकि वहां एक गड्ढा था नीचे, बहुत गहरा गड्ढा था, ड्राई था, सूखा हुआ था, तो इनमें से दो मेंढक नीचे गिर गए। और जैसे वो दो मेंढक नीचे गिरे तो बाकी सबने कहा अभी इनका ऊपर आना तो असंभव है, अभी इनका मृत्यु क्या है, निश्चित है। तो ये पूरा टीम, बचा हुआ टीम उस गड्ढे के ग्राउंड शेप में खड़ा हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, आपका तो आने से कुछ लाभ ही नहीं है, आप तो नीचे ही मर जाओगे, और मर जाओ आप लोग नीचे ही। तो अभी दो मेंढक वो सोच रहे थे नहीं, वो दोनों ने क्या किया, बार बार प्रयास कर रहे थे जंप लगा के बाहर आने का, जंप लगा रहे थे बाहर आने के लिए प्रयास कर रहे थे। तो ऊपर का जो टीम था वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे कि नहीं नहीं आप क्या करो, ये ट्राई करना छोड़ दो, आप मरना ही आपके लिए निश्चित है, आप लोग नहीं आ सकते बाहर। तो ऐसा जब बोल रहे थे तो उनमें से एक था, उसको बहुत वो सब शब्द ध्वनि, उनके जो शब्द ध्वनि है उनके उसके कानों में घुसे और बिल्कुल ये हो गया, इंस्पिरेशन उसका खत्म हो गया और वो गिर के बिल मर ही गया। लेकिन दूसरा था, उसने अपने जोश को नहीं छोड़ा, वो और तीव्रता से जंप लगा रहा था और बाहर आने के लिए ट्राई कर रहा था। एक कुछ ही सेकंड में वो बाहर आया तो सारे बचे हुए मेंढक इकट्ठा हो गए, अरे आप कैसे बाहर आ गए, आपको हमारी आवाज सुनाई नहीं दी। उन्होंने कहा मैं बहरा था इसलिए आपकी आवाज हमें सुनाई नहीं दी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, क्योंकि वो जो बहरा मेंढक था वो सोचता था कि आप इतने जोश से मुझे बुका रहे कि बाहर आ जाओ बाहर आ जाओ, आपका इतना उत्साह देखकर मेरा भी उत्साह बढ़ गया और मैंने क्या किया, एक जंप में ही हम बाहर आ गया। तो उसी प्रकार से पावर ऑफ टंग, जो ये जीवा है उसकी शक्ति तो वर्णन करते हैं कि कितना सामर्थ्यवान है। अब देखिए शिशुपाल, शिशुपाल जब गया राजसूय यज्ञ हो रहा था और उस राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज ने बहुत सारे ऋषि मुनि आदि सबको पूछा कि अग्र पूजा, सर्वप्रथम पूजा करने के लिए कौन योग्य है, बल्कि वहां सारे देवतागण भी थे, भीष्म, बड़े बड़े ऋषि, व्यास देव, नारद आदि सब थे, भीष्म आदि। जब इन्होंने युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि राजसूय यज्ञ की शुरुआत में जो सर्वोत्कृष्ट परम व्यक्ति है उनकी पूजा करनी चाहिए, वो अग्र पूजा का भागीदार है, तो ऐसे कौन है जिनकी मुझे पूजा करनी चाहिए, कौन है पूजनीय, तो उन्होंने भीष्म को पूछा। तो भीष्म ने कहा कि वास्तव में कृष्ण के अलावा कोई भी संसार में पूजनीय नहीं है। और नारद भी वहां थे, नारद ने कहा कि जो व्यक्ति कृष्ण को छोड़कर किसी और की पूजा आदि करता है, सेवा उपासना आदि करता है, वो मृत व्यक्ति के समान है, उसके सारे कार्य निष्फल है, यूजलेस है, विफल है। और सारे व्यासदेव वगैरह सब वो कह रहे थे, तो लेकिन एक व्यक्ति बिल्कुल उसका ब्लड बिल्कुल गर्म हो रहा था, और वो कौन थे? शिशुपाल। अभी शिशुपाल इसलिए भी गुस्सा था, उनसे विवाह होने वाला था सौंदर्यवती रुक्मिणी का, मैरिज के लिए दूल्हा सब कुछ बांध के बैठा हुआ है, और वहां कौन आ गए? कृष्ण आ गए, और वो उठा के ले गए रुक्मिणी को विवाह, राक्षस और विवाह। विवाह के भी अलग अलग प्रकार है, तो उसमें से ये भी एक प्रकार है, जैसे गंधर्व विवाह है। तो ऐसे जब भगवान को ये देखा कि उसको बहुत ये हो रहा था, कष्ट हो रहा था, वो चिल्लाने लगा, उठ के खड़ा हो गया, अब भीष्म को डांटने लगा कि आप इतने बूढ़े आदि हो गए हो, आपको समझ में आना चाहिए कि ये व्यक्ति कैसे पूजनीय हो सकता है। कृष्ण को वो गालियां देने लगा। शिशुपाल ने कहा कि ये कृष्ण एक कुत्ते के समान है, जो घी घी की रोटी को क्या ले गया, जिनके लिए सर्व होने वाला था वो उठा के ले गया, मतलब रुक्मिणी से विवाह होने वाला था तो वो ले गए। तो ऐसे अनावश्यक चीजें बोलते जा रहा था। हाँ, तो भगवान ने शिशुपाल की मदर को वचन दिया था कि 100 बार ये गलतियां करेगा, जो 100 गलतियां खत्म हो जाएगी जीवा का उपयोग, तो इसको इसका विनाश निश्चित है। तो फिर ये बहुत प्रकार से तर्क वितर्क कर रहा था शिशुपाल आदि, और भीम वगैरह सब तैयार हो गए आपने गदा तलवार आदि लेकर शिशुपाल को मारने के लिए, और शिशुपाल पागल की तरह बोलते जा रहा था, अपने जीवा का जितना मिसयूज करना था वो पूर्ण रूपे ने कर रहा था। कई बार हम सोचते कि नहीं अभी बहुत अच्छा प्रसाद बनाया तो बस, आज 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 अधिक से अधिक जीवा का इस्तेमाल करता हूं इसके बाद, नहीं। तो वैसे शिशुपाल ने पूरा मिसयूज करना शुरू किया, अनाप शनाप चीजें बोलने लगा। तो फाइनली क्या हुआ, भगवान को तो एक क्षण चाहिए, भगवान ने अपने सुदर्शन के द्वारा उनको खत्म कर दिया। तो जिस प्रकार से जीवा की तुलना एक एक्स या कुल्हाड़, कुल्हाड़ कहते ट्री को काटने के लिए, पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी, बड़े बड़े वृक्ष है, पावरफुल वृक्ष है, लेकिन उनको धराशाही करने के लिए, उनको काट के गिराने के लिए कितना कुल्हाड़ी कितना साइज का होता है, वृक्ष के सामने इतना छोटा सा है, नगण्य है। तो उसी प्रकार से व्यक्ति का जीवन, ये शरीर आदि कितना बड़ा है लेकिन जीवा कितनी छोटी है, वो क्या कर सकती है, जीवन को खत्म कर सकती है, जब हम उसको सही रूप से सही मायने में यूज नहीं करते। इसलिए कहते हैं टंग इज डेडली पॉइजन, ये जीवा क्या है, बहुत भयावह विष है, जिसका इस्तेमाल सही रूप से करना चाहिए। जीवा को आपने जीव को हैंडल करना मीन्स एक छोटे से बच्चे के समान नहीं होना चाहिए, एक मैच्योर बुद्धिमान व्यक्ति की तरह जीवा को हैंडल करना चाहिए। जैसे किसी छोटे बच्चे के हाथ में आप कोई मशीन गन दे दो, राइफल दे दो, और वो भरी हुई है बुलेट से, तो बच्चा क्या करेगा, उसको गलत इस्तेमाल करेगा। तो उसी प्रकार से ये जीवा भरी हुई है हजारों बुलेट्स है इसमें, और इससे आपको क्या करना होगा, सही रूप से इसका उपयोग करना होगा। तो मैं आज सोच रहा था जीवा के अलग अलग प्रकार, तो कई प्रकार के जीव हैं। एक जीव है द लाइंग टंग, जो झूठ बोलती है। 10 प्रकार के जीवा है, एक तो झूठ बोलने वाली जीव, दूसरी क्या है द प्राउड टंग, दूसरी क्या है गर्वित, गर्वयुक्त वचनों को बोलने वाली जीवा, जो सदैव गर्व से युक्त चीजों को बोलती है, क्योंकि जब व्यक्ति को गर्व हो जाता है तो उसके कान अपने आप बंद हो जाते हैं, और क्या चलने लगता है, क्या चलने लगता है, मुंह चलने लगता है, जीभा चलने लगती है। और तीसरा है फ्लैटरिंग टंग, फ्लैटरिंग का मतलब क्या कहेंगे, फ्लैटरिंग को चापलूसी करना। ये जीवा क्या करती है, हमारे बौद्धिक इंटेंशन, बौद्धिक कुछ हमारे स्वार्थ है, उसकी पूर्ति करने के लिए हम किसी की चापलूसी करते हैं। और ओवर यूज टंग, ओवर यूज का मतलब बहुत अधिक उसका ओवर यूज करना, इस्तेमाल करना। जैसे कुछ लोग होते हैं तो बहुत अधिक दिखाते कि मैं कितना स्मार्ट हूं। हाँ, अपने जीवा को बोलने में यूज कर देगा, मेरे जैसा स्मार्ट कोई और नहीं है। इसको शास्त्र कहते हैं ओवर यूज टंग, और एक होती है स्विफ्ट टंग। स्विफ्ट का मतलब है बहुत फास्ट। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं, हाँ, वो कितना तेज है अपने वाणी आदि में बोलने के लिए। और एक टंग है जो बैक बीटिंग टंग। बैक बीटिंग मतलब पीछे से बोलते रहना किसी के बारे में, हाँ, उसकी निंदा, उसकी चुगली आदि करते रहना। और एक जीवा है टेल बियरिंग टंग। टेल बियरिंग टंग का मतलब है कि वो जो जीव है वो क्या करती है, दूसरों को दुख देने वाले इंफॉर्मेशन को बताती है, दूसरों के फेथ और दूसरों के भक्ति आदि को डिस्ट्रॉय करने की जो बातें जाकर समाज में फैलाती हैं, वो ये इस प्रकार की जीव है। और किसी किसी की जीव तो वो होती है कर्सिंग टंग। कर्सिंग का मतलब है शाप देने वाले, क्योंकि शाप भाई वचन कुछ लोग होते हैं उनसे बात करने का इच्छा ही नहीं होता। जब बोलो मधुर वाणी निकलती नहीं है, सदा सदा क्या होता है उनके टंग में कड़वे शब्द निकलते रहते हैं, क्योंकि इतना दुखी है उसका हृदय, वो बाहर क्या निकलेगा, मधुरता तो निकलेगी नहीं, क्या निकलेगा, शापमय वचन निकलेंगे, पॉइजन निकलेगा। हाँ, दुखी होने के कारण उसकी स्पीच भी, उसकी जीवा के द्वारा जो शब्द आदि वर्णन है वो भी मधुर नहीं है। और एक जीवा क्या है, पियर्सिंग टंग। पियर्सिंग मतलब जो आपको छेद देती है, आपको कष्ट देती है, उसके कटु शब्द जो है। और एक है साइलेंट टंग। साइलेंट मीन्स मौन, शांत रहती है। शांत का मतलब नाम कृष्ण नाम आदि का उच्चारण, किसी को कहते ना कि आप क्या कर रहे हो आजकल, आप थोड़ा भगवान के नाम का जप करो ना। या कुछ लोग होते हैं कीर्तन में होते हैं, कीर्तन चल रहा है, सब बोलते जा रहे हैं, लेकिन इनका मुंह और इनकी जीभ क्या हो गई है, साइलेंट मोड में है। जैसे मोबाइल को आप साइलेंट मोड में रखते हो, तो उसी प्रकार से हमारे जीभ भी साइलेंट मोड में रखते हैं। तो इस प्रकार से जीव का इस्तेमाल हम इस प्रकार से जब करते हैं तो वास्तव में हम अपने दुखों को आमंत्रण देते हैं, जीवन में कष्टों को इनवाइट करते हैं। और ये दूसरा, एक तो ना ये बोलती है, और दूसरा जीभ का क्या इस्तेमाल है, रसों का आस्वादन करती है, इसलिए उसको रसना कहा गया है। रसों को टेस्ट करती है। रस का मतलब है फ्लेवर्स, क्योंकि जीभ को हमेशा फ्लेवर चाहिए, जीभ को हमेशा वैरायटी चाहिए। रोज ही आपको वही वही भोजन घर की पत्नी बना के देगी तो आप फेंक दोगे डब्बे को, है ना, ले ही नहीं जाओगे ऑफिस में डब्बा। अब वही दाल, वही सब्जी, वही टेस्ट, जीभ चाहते फ्लेवर। इसलिए तो इतने सारे वैरायटीज ऑफ रेस्टोरेंट्स आदि निकले हैं, और वैरायटीज ऑफ फूड मॉल्स हैं। तो ये इसी के कारण व्यक्ति भागता है, केवल अपने टन के अग्रभाग की पुष्टि करने के लिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा जीवार लाल से जय इति उति धाय शिष्णोदर परायण कृष्ण नाही पाए। जो व्यक्ति केवल अपनी जीव की संतुष्टि के लिए भागता है पागल की तरह स्वादों का आस्वादन करने के लिए, वो व्यक्ति कृष्ण को प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि जब आप जीव के गुलाम होते हो तो नेचुरली आप अपने स्टमक के गुलाम होते हो, और नेचुरली आप अपने उपस्थ या जनन इंद्रिय के गुलाम होते हो। क्योंकि शास्त्र कहते जीव स्टमक और जनन इंद्रिया एक ही लाइन में है। आप अनवांटेड चीजें खाते हो तो भौतिक भोग के लिए आप लालायित होते हो। तो इसलिए ये मायने रखता है कि आप क्या फीड कर रहे हो अपने स्टमक में, जीवा को कौन से रसों का आस्वादन दे रहे हो, क्या चीजें खिला रहे हो। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो प्रभुपाद के गुरु महाराज है वो कहते थे कि लोग तो इतने पागल हो गए खाने के लिए, कुछ भी खाने के लिए तैयार है। उन्होंने अपने कुछ ब्रह्मचारी को बर्मा में भेजा था, वहां रंगून में जब कहा कि आप एक मंदिर बनाओ, तो उन्होंने एक छोटा सा मंदिर बनाया उनके ब्रह्मचारी भक्तों ने। तो वहां वो भक्त लोग रोज राधा गोविंद जैसे विग्रह थे उनके लिए रोज राजभोग बनाते थे, डिफरेंट प्रकार के भोगास बनाते थे, घी में बनाते थे, शुद्ध घी में। और जिस मोहल्ले में वो रहते थे, मोहल्ले में या कॉलोनी में, तो घी की सारी सुगंध फैल जाती थी। तो आस पास के लोग गालियां देते थे, नाक बंद करते थे, ये कहां से बदबू आ रही है वहां पूरे मोहल्ले के लोग। लेकिन वो मोहल्ले के लोग क्या करते थे, वो जो मोहल्ला था उसके बीच में जो चौक था वहां बहुत बड़ा एक पॉट एक पात्र रखा था उन्होंने, एक बड़ा सा मटके जैसा पीतल का बड़ा सा, और किसी के घर में कॉकरोच चूहा चिपकली जो भी मरता था वो सारे उठा के उसमें डालते थे और ढक्कन लगाते थे और एक साल के बाद वो निकालते थे और उसको वो निकालते थे उस पॉट को खोलते थे बर्तन को और उसमें से वो जो भी इतने एक साल तक इन प्राणियों का जो गंध हो गया है भरा हुआ है आप सोच के आपको कैसे लगेगा, उसको वो निकालते थे और अपने भोजन में जैसे आचार खाते हो आप चटनी खाते हो वैसे थोड़ा सा चपाती पूरी के साथ लगा के खाते थे। भक्ति सिद्धार्थ महाराज कहते थे एक महीने तक उसकी बदबू दुर्गंध नहीं जाती थी और लेकिन उन लोगों को घी की क्या आते थे बदबू आती थी। मतलब ये हद है जिह्वा को दुष्ट करने के लिए जिह्वा की लालसा को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। तो ये जिह्वा प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि छह रस भोगती है, छह प्रकार के रस, एक है स्वीट एक है खट्टा एक है थोड़ा नमकीन एक थोड़ा बीटर कड़वा एक है तीखा। तो इस प्रकार से रस अलग अलग रस जिह्वा क्या करती है एंजॉय करती है और इसलिए भगवद गीता में है कृष्णा इन अलग अलग जिह्वा के रसों के हम गुलाम हो जाते हैं तो अलग अलग गुणों में जो भोजन है वो हमें अच्छा लगता है। तो भगवान 17वें अध्याय में कहते हैं कि जो सात्विक भोजन है वो कैसे है आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवेदना कि आहारा सात्विक प्रिया। जो सात्विक आहार क्या है जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वो आयु बढ़ाने वाला है जीवन को शुद्ध करने वाला बल स्वास्थ्य सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। लेकिन जो राजसिक होता है वो क्या है कटु अम्ल अत्यधिक तीखा खट्टा नमकीन गरम चटपटे शुष्क जलन उत्पन्न करने वाला। कुछ लोगों को लगता है कि जब तक जले नहीं और जीभ से लाल की धारा आए नहीं तीखा तब तक उनको लगता है कि भोजन किया ही नहीं हमने। ये रजोगुणी खाना चाहते हैं ऐसा भोजन रजोगुणी व्यक्ति को प्रिय है और ऐसा भोजन क्या देगा दुख शोक रोग और भय। और तामसिक क्या है खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया हुआ स्वाद विहीन सड़ा हुआ झूठा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसिक है। तो वास्तव में हम सत्वगुणी भोजन को तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हाँ आजकल तो रजोगुणी और तमोगुणी भोजन के लिए क्या है सब लालायित है। फ्रिज में जो हम फूड रखते हैं वो सब क्या है तमोगुणी फूड है। लोग इतने आलसी हो गए हैं कि फ्रेश फूड खाना नहीं चाहते दो दो दिन का सड़ा हुआ खाना चाहते हैं और वो सोचते यही एंजॉयमेंट है संडे सोते रहते हैं कुकिंग नहीं करना है फ्रिज में भरे वही पुरानी चीजें और उसी को खाते हैं वो तामसिक फूड है। तो क्या उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि और आनंद की वृद्धि होगी। और जो रजोगुणी फूड है उसको तो उसकी तो इतनी दुकानें हैं कहाँ कहाँ आप घूमो हर रास्ते को कोने कोने में चाट पापड़ी और पता नहीं बहुत सारी चीजें हैं जिनको खाने के लिए व्यक्ति क्या करता है दूर दूर जाता है कहाँ कहाँ जाता है कई किलोमीटर। जैसे कुछ लोग पिज्जा खाने के लिए कहाँ जाते हैं इटली जाते हैं। तो मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि केवल इस जीव की तृप्ति करने के लिए हमें कहाँ कहाँ भागना पड़ता है उसके लिए हम भागते हैं और लोग जीव को स्वाद देने के लिए कई चीजें खाते हैं। मैं रिसेंटली पढ़ रहा था कि मेंढक का सूप होता है उसमें लिखा हुआ था एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें था फ्रॉग सूप गुड फॉर सोल आत्मा के लिए बहुत अच्छा है फ्रॉग का सूप। तो मैंने वो मेनू में ये भी पढ़ रहा था कैसे वो लोग करते हैं। तो वहाँ चाइना में आप सोच भी नहीं सकते कि वो लोग क्या क्या खाते हैं ताइवान चाइना इन सब कंट्रियों में म्लेच्छ यवन निम्न कुल के लोग हैं वहाँ तो मंकी सूप होता है। मंकी सूप में एक डिवोटी ने मुझे वीडियो दिखाया था वो हम अमेरिका से आए थे हम मायापुर में थे कुछ दिनों के लिए तो उन्होंने वो वीडियो दिखाया कि कैसे मंकी सूप पीते हैं मतलब देख कर ही डर जाएंगे। जीवित बंदर को ले आए पूरा फैमिली बैठा है डाइनिंग टेबल में
और डाइनिंग टेबल के बीच में एक छेद है और उसमें मंकी की गर्दन डाल दी। और एक व्यक्ति आया जैसे नारियल को छेद करते और स्ट्रॉ डाल के पीते हो, वैसे ही जीवित मंकी को क्या किया, छेद किया और पूरा फैमिली एक एक करके स्ट्रॉ डाल के पी रहे हैं। तो मतलब ये मनुष्य नहीं है, ये आसुरी जीव है। हाँ, जैसे कई देशों में तो चींटियों का आचार बनाते हैं, छिपकलियों का चटनी होता है, तो वो तो ऐसे ऐसे चीजें खाते हैं। मुझे याद है हमारे बचपन में एक डॉक्टर, सोशल वर्कर चाइनीज आए थे डॉक्टर्स विलेज में कुछ महीनों के लिए रहे, तो वो ये सब चीजें खाना शुरू कर दिया था, तो गांव वालों ने उनको भगा दिया वहां से। तो मतलब केवल इस जीवा की तुष्टि के लिए व्यक्ति क्या क्या कर सकता है, हर रस को भोगने के लिए वो पागल हो जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ये जीवा वास्तव में हमें मृत्यु का आमंत्रण देती है। जैसे मछली को कैसे पकड़ते हैं, हाँ, जो मछली को जो मछुआरा है एक हुक में कुछ मांस का टुकड़ा डालता है और वो जल के अंदर फेंकता है, तो जल के अंदर डालकर मछली को लगता है कि ये कितना स्वादिष्ट है मेरे लिए है, लेकिन उसको पता नहीं कि इस टुकड़े के मांस के अंदर भी क्या है, हुक है। जैसे मैं उसको खाऊंगी तो मेरे मृत्यु निश्चित है, और जैसे मछली उस हुक को पूरा खाती है तो हुक उसके ऊपरी भाग को फाड़कर बाहर आ जाता है, वो मछली मर जाती है। इसलिए ये भयावह सिचुएशन है। इसलिए शास्त्र कहते, श्रीमद् भागवतम कहता है, संतुष्ट केन वा राजन वर्त तापि वारिनः। ये राजन जो मुनिगण होते हैं वो पानी पीकर भी संतुष्ट रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवा की संतुष्टि के लिए पागल हो जाता है उस व्यक्ति को घर में एक कुत्ते के भांति रहना होता है। इतने कठोर कठोर वचनों का वर्णन शुकदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में करते हैं। और जो व्यक्ति अपने जीवा के वश में हो जाता है उस व्यक्ति का धीरे धीरे बल, तेज, विद्या, तप, यश, ज्ञान, ये क्या होने लगता है, खत्म होने लगता है, हरण हो जाता है, वो कार्य नहीं कर सकता, आध्यात्मिक कार्य में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, वैरागी हैया करे जिह्वा लालस। हम भगवत भक्ति में लगना है तो वास्तव में जीवा की लालसा को हमें छोड़ना होगा। परमार्थ जाय हर रसेर वश, तो कभी भी परमार्थ को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज एक बार कोई उनके मंदिर में एक फेस्टिवल था, तो एक साधु कहां से आते थे और वो आते थे प्रसाद के समय, जब प्रसाद वितरण होता है उस समय पहुंचते थे। फेस्टिवल, कीर्तन, प्रवचन, उससे कुछ लेना देना नहीं है, हम कहां पहुंचेंगे, टाइम में पहुंचेंगे। कौन से टाइम में पहुंचेंगे, प्रसाद के टाइम में। तो वो जो आते थे हर फेस्टिवल में और वो प्रसाद लेने के बैठते थे, तो वो बहुत सीनियर थे, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के शिष्य उनको सर्व करते थे। तो एक फेस्टिवल में मालपुआ बनाया था, क्या बनाया था, मालपुआ एक स्वीट होता है ना, पूरी जैसा बहुत स्वीट होता है, तो वो बनाया और वो खिलाते जा रहे, वो खाते जा रहे खाते जा रहे, तो भक्ति सिद्धांत महाराज के एक शिष्य थे, उन्होंने देखा, अरे ये तो खाते जा रहे। उन्होंने कहा, स्वामी जी आप मालपुए को खा रहे हो या मालपुआ आपको खा रहा है। उनको गुस्सा आया, तो वो भक्ति सिद्धांत महाराज के पास गए, उन्होंने कहा, ये आपका शिष्य क्या बोल रहा था। उन्होंने कहा, वो सही बोल रहा था, क्योंकि जब हम जीवा को वश में नहीं करते हैं, भोजन को अनकंट्रोल रखते हैं, तो फिर हमसे भजन नहीं होगा, हरे कृष्ण महामंत्र नहीं होगा, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। इसलिए शास्त्रों में जीवा के वश जो व्यक्ति है उसको जीवा लंपट कहा गया है, जीवा लंपट, जो जीवा के प्रति आकृष्ट है। तो शास्त्र ये भी बताते कि कैसे हमें इस जीवा पर वश प्राप्त करना चाहिए। प्रभुपाद कहते थे, कोई चीज करने से हम इस जीवा पर पूर्ण रूपेण कंट्रोल पा सकते हैं और अपना जीवन सुखमय कर सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा, therefore by systematic regulation the tongue should always be engaged in testing the remnant a footstep offered to Krishna and chanting Hare Krishna Mahamantra. तो प्रभुपाद गीता में लिखते हैं कि दो चीजें हैं यदि हम सीरियसली करते हैं और वो भी बहुत गंभीरता से, केवल इस जीवा के अंदर कंठी धारण करने का मतलब क्या है कि मैंने अभी भगवान की जो सर्वप्रिय तुलसी है उसको मैंने अपने जीवा में धारण किया है, कंठ में धारण किया है, इसका मतलब है कि कृष्ण प्रसाद के अलावा इस कंठ से नीचे कोई और चीज नहीं जाएगी, इसलिए कंठी है, यानी कि शो है, बहुत अच्छा लग रहा हूं या बहुत अच्छी लग रही हूं तो इसलिए 2-3-4-5 राउंड पहनते जाओ, इसके लिए नहीं, ये तो इसके लिए है कि कृष्ण प्रसाद के अलावा मेरे कंठ से नीचे कोई और उतरना नहीं चाहिए। इसलिए प्रभुपाल ने कहा कृष्ण भक्ति सुसुखम कर्तुम अव्ययम्, ये कोई निरस नहीं है, कृष्ण भक्ति हमेशा सुखमय है, लेकिन आप शास्त्र गुरु और साधु के आदेशानुसार आप उसको करते हो। इसलिए आप प्रभुपाद को एक उनके शिष्य ने पूछा, दयानंद गोस्वामी ने कहा कि प्रभुपाद आप बताओ कि कैसे जीव को कंट्रोल किया जाए। प्रभुपाद ने कहा जस्ट एट कृष्ण प्रसाद, केवल कृष्ण प्रसाद को खाओ, कोई टेंशन नहीं है, जीवा को खाना ही है तो क्या खाओ, कृष्ण प्रसाद। एक उनका प्रभुपाद का सेवक था, सेक्रेटरी सर्वेंट, उन्होंने कहा प्रभुपाद मैं अपने जीवा पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप बताओ क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा चांद हरे कृष्ण महामंत्र और आप प्रार्थना करो। तो उसने किया और बाद में गया प्रभुपाद ने जब भी कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं, प्रार्थना भी कर रहा हूं, हम फिर भी मुझसे ये नहीं हो रहा है। तो प्रभुपाद ने कहा, उन्होंने कहा कि फिर भी मेरी जो जीव है वो वश में नहीं हो रही है। प्रभुपाद ने कहा मेरे पास भी तो जीव है। हाँ, प्रभुपाद ने कहा आप क्या करो, सिंपल फूड खाओ, हाँ, जो कृष्ण को अर्पित किए हुए सरल फूड खाओ, जिससे आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा और आप क्या कर पाओगे लाउडली हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत महाराज के जीवन से हम देखते हैं, वो छोटे से बालक थे तो उनके पिता ने बहुत सारे मैंगोज एक दिन लाए आम, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने खा लिए बिना ऑफर किए, तो उनके पिता ने उनको डांटा कि अरे अरे भक्ति सिद्धांत विमला प्रसाद, आपने बिना भोग लगाए कृष्ण को भोग लगाए बिना खाया आपने आम को, तो उन्होंने व्रत लिया कि इसके बाद मैं कृष्ण का अपराधी हूं, क्योंकि सारी चीजें कृष्ण की है और कृष्ण की सेवा में वो लगनी चाहिए, सारी चीजें कृष्ण की है। उन्होंने कहा कि मैं इससे आगे कभी भी आम नहीं खाऊंगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कभी भी जीवन भर आम को स्वीकार नहीं किया। इसलिए शास्त्र प्रभुपाद ने कहा जीवा को वश करना बहुत सरल है, क्योंकि थोड़ी सी बुद्धि की आवश्यकता है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा ये जो आंदोलन है ये क्या है, किचन रिलीजन है, किचन रिलीजन, जहां कृष्ण प्रसाद की कृष्ण प्रसाद भरा हुआ है। इसलिए प्रभुपाद उनके एक शिष्य थे अमेरिकन, जिनका नाम उन्होंने रखा था कीर्तनानंद, क्या नाम था, जो कीर्तन में आनंद लेता है वो पहला शिष्य था अमेरिकन, उनको उन्होंने दीक्षा देके कीर्तनानंद दास नाम रखा, फिर उनको कुकिंग भी करना सिखाया, फिर कहा तुम्हारा नाम क्या है, किचनानंद, किचन खाने का है, प्रसाद पाओ जिसके द्वारा आप जीवा को वश कर सकते हो। हम तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि जब हम भगवान को अर्पित किए बिना भोजन ग्रहण करते हैं, यज्ञ शिष्टा शिना संतो मुचंता सर्व के लिए विषय है, जो भगवान को अर्पित किए बिना भोजन को खाते तो हम पाप को खाते हैं, और पाप हमारे जीवन शरीर में वास करता है तो हमारे जीवा से कृष्ण नाम नहीं निकल सकता। भगवान नाम उच्चारण करना हमारे लिए बहुत तपस्या हो जाएगा, जीभ मोटी हो जाएगी, पतली चाहिए जीभ, क्या चाहिए, पतली चाहिए, जिसके द्वारा हरि नाम का उच्चारण हो सकता है। जैसे द्रौपदी ने भीष्म को यही कहा, भीष्म को जब अर्जुन ने बाण से मारा और वो शरशय्या पर लेटे हुए थे और वो मृत्यु का इंतजार कर रहे थे, टाइम का इंतजार कर रहे थे, शुभ शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे थे, तो कृष्ण ने सारे पांडवों को उनके पास भेजा और स्वयं कृष्ण उनके सामने जाकर खड़े रहे,
और उन्होंने कहा कि हे पांडव आप इनसे उपदेश ग्रहण करो। तो वह द्रौपदी भी थी और भीष्मदेव लेक्चर देना शुरू किए तो द्रौपदी हंसते जा रहे थे कि आप कितना अच्छा लेक्चर दे रहे हो, मेरा जब वस्त्र हरण हो रहा था तब एक शब्द भी निकल रहा है नहीं निकल रहा था और अभी पांडवों को बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहे हो। तो भीष्म ने कहा कि हे द्रौपदी उस समय में किसका अन्न खा रहा था, कौरवों का अन्न खा रहा था, दुर्योधन आदि का पाप से भरा हुआ भोजन को ग्रहण कर रहा था जिसके कारण मेरा ये ब्लड उससे बना हुआ है और अर्जुन के बाणों से ये ब्लड अभी निकल गया है, सारा पाप निकल गया है, अभी मेरे पास क्या है वो शक्ति है या उचित प्रकार से मैं उसको बोल पा रहा हूं। तो जो भीष्म है वो द्रौपदी को इस प्रकार से बोलते हैं और शास्त्र वर्णन करते हैं कि वास्तव में हमें प्रयास करना चाहिए। पहला यूज है कि हमें अब प्रयास करना है कि केवल कृष्ण प्रसाद को ही हम ग्रहण करें। जैसे राजा अम्बरीश थे, पूरे विश्व के राजा थे, अब वो कैसे अपनी जीव को कृष्ण की सेवा में लगाते थे, श्रीमद तुलसा रसना तदर्पिते, जो भगवान के चरणों में अर्पित की हुई तुलसी उसको रोज विदाउट फेल वो ग्रहण करते थे, जिसके द्वारा जीवा को वश करना बहुत सरल हो जाता था क्योंकि जीव को हर समय ये जो उसके डिमांड से वो बुलाते हैं। प्रभुपाद ने जब ये आंदोलन शुरू किया न्यूयॉर्क में तो नया नया टेम्पल शुरू हुआ था, तो वहां नए नए वो सारे लड़के आते थे, अमेरिकन्स लड़के लड़कियां, तो कभी कभी वहां से आइसक्रीम का गाड़ी जाता था और वो बेल बजाता था, तो कई सारे लोग जैसे आइसक्रीम की गाड़ी का बेल बजता था वो भाग जाते थे, आधा हॉल खाली हो जाता था। तो प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते कि माया इज कॉलिंग, माया की घंटी बज रही है, कृष्ण से आपको क्या कर रहे हो दूर ले जा रही है। तो जीवा हमें एक स्थान से क्या करती है, दूसरे स्थान में ले जाती है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि जो वक्ता है उसको मित भूख होना चाहिए। 26 गुणों में से 26 जो वक्त के अंदर गुण होते हैं उनमें से एक है मित भूख। मित भूख का मतलब है जितना रिक्वायर है उतना ही वो ग्रहण करता है, आवश्यकता से अधिक नहीं। प्रभुपाद कहा करते थे कि बच्चा अधिक नहीं खा सकता और जो बूढ़ा व्यक्ति है वो कम नहीं खा सकता। तो इस प्रकार से भक्त का मतलब है कि हम क्या करें, केवल अपने आप को कृष्ण प्रसाद से ही बांध के रखें, प्रयास करें, चाहे हम किसी भी स्थान में क्यों ना हो, घर में क्यों ना हो, तो हम जब कृष्ण प्रसाद पाएंगे तो हमारा शरीर शुद्ध होगा, जैसा अन्न वैसा मन, तभी मन से आप कृष्ण को, मन को कृष्ण में लगा सकते हो, अन्यथा नहीं। और दूसरा उपाय क्या है जीवा को कंट्रोल करने का, शास्त्र कहते हैं कि ये जीवा का काम है बोलना, तो अधिक से अधिक क्या करो अपने जीवा से कृष्ण के नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण नाम कृष्ण रूप गुण लीला आदि का अधिक से अधिक वर्णन करो, रुको नहीं, प्रयास करो कि ये जीवा सदैव कृष्ण नाम आदि में मग्न रहे। सनातन गोस्वामी ने कहा अक्ष्म फलम का दृश्य दर्शनम ही, कि है आंखें आपके लिए फल क्या है, भगवान के भक्तों का दर्शन करना। तनो फलम तो दृश्य गात्र संग ही, और शरीर का लाभ क्या है, भक्त या भगवान का स्पर्श करना। जिह्वा फलम तो दृश्य कीर्तनम ही, हे जिह्वा तुम्हारा लाभ क्या है, तुम्हारे लिए बेस्ट चीज है कि भगवान के भक्तों का गुणगान करो, भगवान का गुणगान करो अधिक से अधिक। सुदर लबाही भागवता ही लोके, क्योंकि जगत में भगवान के भक्त बहुत अधिक दुर्लभ है, सुदुर्लभ है। इसलिए श्रीमद् भागवतम की शुरुआत में आता है कि जो कान कृष्ण कथा को सुनते नहीं वो कान क्या है, सांप के बिल के समान है। जिह्वा सती दार दुर्गे वसुत नचोप गायति उरुगाय गाथा, जो जीव भगवान के गुणों का वर्णन नहीं कर सकती, जो जीव कृष्ण नाम को उच्चारण नहीं कर सकती अधिक से अधिक, वो जीव क्या है, सती नहीं है असती है। सती का मतलब है पतिव्रता नारी, असती का मतलब है पतिव्रता
नारी नहीं। जो स्त्री अपने पुरुष के अलावा दूसरे का गुणगान करती है वो स्त्री क्या है? सती नहीं है, साध्वी नहीं है, असती है। उसी प्रकार से जो जीव कृष्ण के अलावा किसका गुणगान करती है तो श्रीमद् भागवतम में सूत्र गोस्वामी कहते हैं कि वो जीव सती नहीं है, साध्वी नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, योग्य नहीं है। तो इस प्रकार से ये जीव वास्तव में सती होनी चाहिए। सती का मतलब है कृष्ण का गुणगान करने में इस जिह्वा को लगना चाहिए। कृष्ण नाम, कृष्ण के गुणों को वर्णन करना, जिस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी परीक्षित के लिए वर्णन कर रहे थे दिन रात। इस प्रकार से हम जब अपने जीव को अधिक से अधिक इन दो कार्यों में मग्न करते हैं, कृष्ण प्रसाद को ग्रहण करते हैं, कृष्ण के गुणगान का वर्णन करते हैं, तो ये जिह्वा हमारे लिए हितकारी होती है। क्योंकि ये जिह्वा उन लोगों का गुणगान करती है जो लोग कृष्ण कथा सुनने के इच्छुक नहीं है। जो व्यक्ति अपने जीव का इस्तेमाल ऐसे लोगों का गुणगान करने में लगाता है, ऐसे लोगों की प्रशंसा करता है जो कृष्ण के बारे में सुनना नहीं चाहते, कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, उन लोगों की तुलना श्रीमद् भागवतम क्या करता है? वो कहते हैं कि ऐसे लोग एक कुत्ते के भांति हैं और एक सुअर के भांति हैं, एक ऊंट के भांति हैं और एक गधे के भांति हैं। तो मतलब शास्त्र क्यों इस प्रकार के हेवी स्टेटमेंट बोल रहे हैं? क्योंकि ये नीडेड है, आवश्यक है हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए। इसलिए है श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में वर्णन आता है, जब यमराज अपने यमदूतों को भेजते हैं यहाँ और उनको एक उपदेश भी देते हैं। यमराज कहते हैं कि मेरे पास उन्हीं लोगों को ले आओ। कौन से लोगों को ले आओ? यमराज एक श्लोक बोलते हैं, वो कहते हैं जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम देहम, कि हे यमदूतो, जिस व्यक्ति की जीव भगवान के गुण नाम आदि का वर्णन नहीं करती, चेतन क्षण स्मरति तरणारविंद, जिस व्यक्ति का चित्त मन कृष्ण के चरणारविंद का स्मरण नहीं करता, कृष्णाय नो नमति यत् शिर एकदापि, और जिसका माथा सर कृष्ण के लिए एक बार भी नहीं जमीन पर झुकता, हाँ ऐसा व्यक्ति क्या है? मेरे पास आप ले आओ, यमराज यमराज यमदूतों को कहते हैं। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम ये वर्णन करता है। और मुकुंद माला में एक अच्छा श्लोक आता है जिसको मैं पढ़कर इसको विराम देता हूँ। मुकुंद माला में कहा गया है, राजा कुलशेखर वर्णन करते हैं कि क्या करना चाहिए मेरे अलग अलग इंद्रियों को। तो मुकुंद माला में राजा कुलशेखर कहते हैं जिह्वे कीर्तय केशवम मुररपि चेतो भज श्रीधरम, कि हे जिह्वा, हे जिह्वा तुम क्या करो, जो केशव है मुर जो आसुर है, मुर राक्षस है, उसके कीर्तन का गान करो, और हे हाथ आप क्या करो, सदैव कृष्ण की सेवा में लगो। हे मेरे कान सदैव कृष्ण के बारे में सुनो। हे मेरी आंखें आप क्या करो, सदैव कृष्ण का दर्शन करो। और हे मेरे नाक आप क्या करो, कृष्ण को अर्पित किए गए फूल और कृष्ण को अर्पित गई जो तुलसी है हम उसका सुगंध ग्रहण करो। इस प्रकार से अलग अलग शास्त्रों में वर्णन आता है। और बल्कि बिल मंगल ठाकुर अपने जीव को प्रार्थना करते हैं, वो कहते हैं वो अपने जीव को हाथ जोड़कर, कई आचार्य हैं जिन्होंने अपने जीव को हाथ जोड़कर कहा है, उन्होंने कहा हे जिह्वा तुम क्यों नहीं कृष्ण का गुणगान करती, उनके सामने रो रहे हैं जीव के सामने। वो कहते हैं जिह्वे सदैव भज सुंदरानी नामानी कृष्ण शमनोहरानी समस्त भक्तार्ति विनाशनानी गोविंद दामोदर माधवेति। तो बिल मंगल ठाकुर कहते कि हे मेरे जीव तुम क्या करो, सदैव भज सुंदरानी, अरे कृष्ण इतने सौंदर्यवान है उनका भजन करो। नामानि कृष्णस्य मनोहराणि, कृष्ण के नाम इतने मधुर मनोहर हैं उनका वर्णन करो। समस्त भक्तार्थ विनाशनानि, और ये जो नाम सारे भक्तों के कष्टों का विनाश करते हैं ऐसे नामों का है जीव क्या करो, तो उच्चारण करो। वो नाम क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे।
तो कोई व्यक्ति हाँ ये सब चीजें सुन के कह सकता है, हाँ जैसे एक वक्त मुझे कह रहा था कि प्रभु जी मैंने जब इस्कॉन में नहीं आता था या इस्कॉन ज्वाइन नहीं किया था तो बहुत सुखी था, आने के बाद बहुत दुखी हो गया हूँ। तो मैंने कहा क्या हो गया, कौन सा पहाड़ टूट गए तुम्हारे जीवन में? कहते यहाँ आओ तो आप कहते हो ये मत नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। अब उन्होंने कहा मुझे तो लगता है पंछी बनो और उड़ के फिरो, मेरा तो ऐसा लाइफ स्टाइल है। वो कहते हैं कि मैं तो चाहता हूँ पंछी बनो और उड़ते फिरते रहो, लेकिन मुझे अभी लग रहा है कि पहले बहुत अच्छा था, अभी मेरा जीवन क्या हो रहा है, दुखी दुखी हो रहा है। कहा जा नहीं सकते, कुछ खा नहीं सकते, हाँ और फिर सोचना होता है, कुछ बोलना भी है तो भी सोचना होता है। उन्होंने कहा मैं सुबह सुबह टेम्पल आ रहा था तो एक लड़का बीच में आ गया, मरने वाला था, तो मैं गुस्सा आ गया, गाड़ी से उतरा और मेरे मुख से सुंदर श्लोक निकलने वाले थे, मतलब गालियां निकलने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं नहीं अभी कृष्ण भक्ति कर रहा हूँ, जीव का सदुपयोग करना चाहिए। तो मैंने कहा मुझे तो लगता है कि आपके चरणों की धूलि लेना चाहिए, कम से कम आप किसी को कृष्ण भावना भावित होना कहते हैं, कृष्ण भक्त हो जाना या कृष्ण भावना भावित हो जाना कुछ और नया चीज नहीं है, कि आप हर समय अपने कार्यों में क्या होते हो, कॉन्शियस होते हो, सावधान होते हो और ये सोचते हो कि ये कार्य कृष्ण गुरु और वैष्णव के लिए प्रसन्न करने के लिए है तो मैं उसको करूं अन्यथा ना करूं। इस प्रकार से हम, लेकिन जब हम इन कार्यों को करते हैं तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक आनंद को अनुभव करते हैं। और शास्त्र कहते हैं कि भौतिक आनंद को आपको अनुभव करना है तो आपके पास बहुत आपको गधे की तरह मेहनत करनी पड़ेगी, भौतिक सुख के लिए, आनंद को अनुभव करने के लिए उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, धन लाना पड़ेगा, मॉल में जाना पड़ेगा, मूवीज को देखना पड़ेगा, कितने पाप करने पड़ेंगे तब आपको लगेगा कि नहीं थोड़ा सा आनंद मिल रहा है, या तो अनुभव भी नहीं होता। लेकिन आध्यात्मिक आनंद को आपको अनुभव करना है, बल्कि भौतिक आनंद अनुभव नहीं होता, आध्यात्मिक आनंद को आप अनुभव कर सकते हो और उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, उसके लिए दो चीजें चाहिए। एक तो क्या चाहिए, जीभ को क्या करो, वाइब्रेट करो, जीभ से बोलो कृष्णा और हाथ से क्या करो, तालियां बजाओ। इतना ही करोगे तो आध्यात्मिक आनंद से आप घर जाओगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से इसका मैसेज यही था रूप गोस्वामी के उपदेशामृत का। आपके पास एक बुक नहीं है तो सब लोग जरूर इस बुक को ले लो और पर्सनली इसको रीड करो। हर सैटरडे यहाँ डिस्कस करते हैं, इसमें 11 श्लोक, सारे वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, इतिहास, सबका क्या है, निचोड़ है, शुरुआत से लेकर अंत तक। ये महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। उपदेश अमृत का मतलब ही है, उपदेश मीन्स इंस्ट्रक्शन, अमृत का मतलब है नेक्टर या इसेंशियल, जो उपदेश बहुत इसेंशियल है, आवश्यक है, उसको उपदेश अमृत कहते हैं। या फिर जिन उपदेशों के द्वारा आप डेथ लेस हो सकते हो, मृत्यु आदि से मुक्त हो सकते हो, तो रूप गोस्वामी की शिक्षा है। हाँ, जिनसे हमने सीखा कि किस प्रकार से जीवा वेगम से हम जीवन भी प्राप्त कर सकते हैं और मृत्यु को भी पास हो सकते हैं और उसके कितने भयावह परिणाम हैं और उसके लिए बेस्ट यूज है उसको कंट्रोल करने के लिए कृष्ण प्रसाद को ग्रहण करें। और दूसरा क्या करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।